ओम शांति, ओम शांति। आप सभी का बाबा के इस प्यारे प्यारे मधुबन के अंदर बहुत 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 हार्दिक स्वागत है। बाबा की तरफ से, हमारी सभी दादियों की तरफ से, दादी जानकी जी की तरफ से और सभी पांडव भवन निवासियों की तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 हार्दिक स्वागत है। मैं समझती हूँ कि पांडव भवन का जो वातावरण है ना, अभी कैसा वातावरण है? बहुत अच्छा। कुदरत ने, प्रकृति ने भी आप सबको बहुत बहुत अच्छा साथ दिया है। शायद उनके जबरदस्त प्रभाव में आप सभी मौन में आ गए हैं, है ना? सब मौन भट्टी में आए हैं ना? बहुत अच्छा। तो अभी एक मौका मिला है आपको, बहुत अच्छा। शायद लाइफ में बहुत कम मौका ही आता है ना? तो ये 3 दिन की आप मौन भट्टी जो करेंगे, उसके अंदर आत्मा को इस रूहानी राह में एक बहुत जबरदस्त अपग्रेड मिलने वाली है ना? आत्मा की उन्नति बहुत फास्ट उन्नति होती है। तो आप सभी क्या लक्ष्य लेकर के इस भट्टी को करेंगे, क्या लक्ष्य रखेंगे, क्या पुरुषार्थ करेंगे, कैसे पुरुषार्थ करेंगे, वो हमारी आदरणीय राजयोगिनी बहन शिलूबेन जी सबके आगे स्पष्ट करेंगे। शिलूबेन जी को तो आप सभी जानते ही हैं, जानते हैं। अच्छा, बाबा की बहुत बहुत सर्विसेबल राइट हैंड बाबा की है। मैं समझती हूँ कि बहुत शुरू में बाबा ने आपको विशेष कहा था कि आपकी जीभ पर सरस्वती बसी है, तो आपने शुरू से ही आप हमारे यज्ञ की एक सीनियर राजयोगी टीचर भी रही है, बहुत अच्छी फैकल्टी भी है, भिन्न भिन्न विविध विषयों के अंदर। शुरू में तो आपकी एक जैसे सीरियल जैसा बहुत विषयों के ऊपर आपने टीवी के अंदर प्रवचन दिए हैं, वो आप सबने भी सुने होंगे। तो ऐसी हमारी बहन शिलूबेन जी आपको अभी भट्टी का लक्ष्य विशेष बताएंगे। ओम शांति।
और आपको इतनी अच्छी टीचर मिली है, इनका भी तो स्वागत करो ना। खास आपके लिए बड़ौदा से आई है, आप डॉक्टर हैं, परंतु कैसे बाबा की सेवा में आप लग गए हैं।
इस शरीर का नाम तो बहन जी ने बता दिया, निरंजना है, और लौकिक में मेडिकल पढ़ाई किया है, डॉक्टर की पढ़ाई किया है, और बड़ौदा से आए हैं। बाबा की सेवा में पिछले 50 इयर्स से हैं।
ओम शांति। प्यारे बेहद बाप के घर में मधुबन तपोभूमि में, वरदान भूमि में, परिवर्तन भूमि में आप सबका हमारी तरफ से भी बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो क्योंकि बहुत आना चाहते होंगे, लेकिन उनमें से आप ही चुने गए और आप यहाँ पहुंचे हैं। आप में से और भी चुने गए होंगे, लेकिन ऐन मौके पर वे नहीं पहुंच पाए, और ऐसे भी होंगे जिनका नाम नहीं होगा लिस्ट में, लेकिन आखिरी क्षण कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जो उनका नाम ऐड हो गया। हाँ, बहुत होंगे, इसलिए हाथ नहीं उठवाती हूँ। लेकिन जो पहुंच गए वो बहुत 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 भाग्यशाली है। हाँ, फिर से पहले स्वागत की ताली, अभी भाग्य की ताली है। और भी ऊंची बात कि आप में से अधिकतर भाई बहने होंगे आप जो पहले मधुबन में कभी रहे नहीं है, परंतु शांतिवन में रहते हैं, आते हैं बाबा से मिलने और यहाँ चार धाम की यात्रा करके चले जाते, पर यहाँ रहे कभी नहीं है। तो इसलिए विशेष जो पहली बार मधुबन में 3 दिन रहेंगे वो हाथ उठाएं। अभी वो हाथ देखो, अरे बाप रे, सारे लगभग। हाँ, क्योंकि जब से जो पहले रह चुके हैं वे हाथ उठाएं, गिने चुने होंगे जो पुराने होंगे, क्योंकि 96 के बाद, 96 के बाद तो अधिकतर सब शांतिवन में ही रहते थे, और मधुबन में तो और कोई बहुत प्रोग्राम नहीं होते थे, क्योंकि ज्ञान सरोवर भी बन गया, फिर शांतिवन इतना बड़ा बन गया, तो इसलिए मधुबन में तो बस चार धाम की यात्रा करने आते थे। तो अभी 1-2 साल से यहाँ पर बठिया शुरू की है, तो ये भी आपका बड़ा भाग्य है। पहली बार आपके सेंटर को चांस मिला है ना। हमारी फिर भी कुछ एक को मिला है, क्योंकि 3 साल से चल रहा है तो कुछ एक को मिला है, तो इसीलिए उसका भी भाग्य है जो पहली बार मधुबन में रहने का चांस मिला है। वो भी ताली बजाओ। तो आपने सुना कि बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के आप इस भट्टी में आए हैं। जैसे ही आप आए, आपको अकोमोडेशन मिली, तो आपके गले में ये माला पहना दी। ये माला कहो, विजय माला कहो, जो भी कहो, ये आपको मिल गई। और इसमें बैज में क्या लिखा है, हाँ पढ़ो, पढ़ा आपने क्या लिखा है जी? मौन योग तपस्या भट्टी। तो इस बड़े मानो पान का बीड़ा आपने उठाया गले में माला डालकर, कि हम अगले 3 दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक मौन योग तपस्या करेंगे। संकल्प लिया ना आप सभी ने माला पहन करके। तो अभी गीत भी आपने सुना, मौन की कितनी भारी महिमा है। तो यहाँ 3 दिन पहले तो मौन में रहना होगा, फिर योग तपस्या करनी होगी, और फिर भट्टी में पकना होगा। ये 3 बड़ी बातें इस भट्टी के लक्ष्य में आएगी। तो पहला लक्ष्य तो है मौन। मौन की भाषा क्या है? साइलेंस। परम धाम में हम सब आत्माएं मौन में रहती है, शरीर ही नहीं है तो आवाज कहां से होगा। सूक्ष्म वतन में भर सूक्ष्म शरीर है, लेकिन आवाज नहीं है। बाबा न्यूस्टन भी कहा, वहां मूवी चलती है। पहले जमाने में मूवी फिल्में होती थी, आवाज नहीं होता था, खाली होंठ चलते थे। है कोई बुजुर्ग जिन्होंने ऐसी कोई मूवी देखी जो आवाज नहीं, खाली होंठ चलते थे? देखिए, अच्छा, हमारे कई बुजुर्ग होंगे, पहले ऐसे फिल्में होती थी, फिर बाद में टॉकी हुई है, तो इसीलिए यहाँ आपको उसी मौन की भाषा का अनुभव करना होगा, यानी साइलेंस की भाषा। साइलेंस में जितना सुख है उतना आवाज में नहीं है, सच पूछो तो। इसीलिए इंग्लिश में कहावत है, साइलेंस इज गोल्डन, स्पीच इज सिल्वर। साइलेंस जो है वो तो सोने के समान है, और आवाज में आना, स्पीच में आना, वाणी में आना, वाचा में आना, ये फिर भी चांदी है। तो आपको सोना का अनुभव होगा यहाँ मौन में रहने का। लेकिन फिर बाबा प्रश्न भी करते हैं कि आवाज में आना सहज है या आवाज से परे जाना सहज है, तो बाबा को क्या जवाब देते हैं, कौन सा सहज है, आवाज में आना सहज है या आवाज से परे जाना सहज है? तो सहज क्या है अभी इस समय? सहज है आवाज में आना, जबकि आवाज से परे जाना सहज होना चाहिए, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म तो है ही साइलेंस। पर ये शरीर मिला है, आवाज में आने का, भाषा में आने का, जो यहाँ पर ही साकारी दुनिया में मौका मिलता है, इसलिए वो सहज लगता है। परंतु लक्ष्य हमको यही बाबा ने दिया है कि आवाज से परे जाना है, परमधाम जाना है, जो आवाज से परे की दुनिया है। भले सूक्ष्म वतन से वाया जाएंगे, पर सूक्ष्म वतन की भाषा भी आवाज की भाषा नहीं है। हाँ, सतयुग में आएंगे तो फिर भले आवाज में आएंगे, लेकिन उसके पहले तो वाया सूक्ष्म वतन होकर घर जाना है शांति की दुनिया में। बाबा ने उस दिन भी कहा, बाबा को ये शांति धाम ये शब्द बहुत पसंद है, जितने कितने नाम है उस धाम के, परम धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, बहुत है नाम, लेकिन शांति धाम ये बहुत पसंद है, क्योंकि बाबा को शांति बहुत पसंद है। तो मधुबन, पहले आप चंडीगढ़ से आए, वो तो टॉकी की दुनिया थी या है, फिर यहाँ आए तो सवेरे से कह रहे, बहन जी यहाँ तो सूक्ष्म वतन ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि फॉगी है, बादल नीचे आ जाते हैं, तो जैसे सूक्ष्म वतन का अनुभव होता है। तो एक कदम तो आगे बढ़े, टॉकी की दुनिया से मूवी की दुनिया में आ गए, अब एक कदम और आगे बढ़ना है, कौन सा, मूवी की दुनिया से साइलेंस की दुनिया में जाना है। तो ये एक बहुत पक्का लक्ष्य रखना है। पर मन का मौन भी बहुत जरूरी है, चलो मुख का मौन तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन उनसे भी ऊंचा है मन का मौन। मन का मौन मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है, या है क्या कुछ और बातें सोचने के लिए, कोई गृहस्थी नहीं है, कोई बाल बच्चे तो नहीं लाए यहाँ कोई, तो सब जिम्मेदारी देकर आए हैं ना, सब घर की जिम्मेदारी, दुकान की जिम्मेदारी, दफ्तर की जिम्मेदारी, या जो भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, वो सब दूसरों को देकर आए ना, कि यहाँ लेकर आए हैं? याद तो नहीं आएंगे, पता नहीं वो काम मैंने उनको दिया था वो करेगा या नहीं करेगा, हुआ होगा या नहीं होगा, हाँ ये सब भूल जाओ, क्योंकि यहाँ का पूरा लाभ लेना है। कई ऐसे ना, जहाँ से आते हैं कहीं और जाते हैं, तो जहाँ से आते हैं वो याद रहता है, और जहाँ आते हैं वहाँ का लाभ नहीं लेते, और लाभ नहीं लेते हैं तो फिर उसी में रहते जहाँ से आए, फिर जब वापस जाते फिर याद आता, अरे मधुबन में कितना अच्छा था। तो फिर वहाँ जाते तो यहाँ की याद आती है, और यहाँ आते हैं तो वहाँ की याद आती है, रोना क्या चाहिए। हाँ, जो वहाँ थे चलो थे वहाँ, अभी यहाँ आए हैं तो एक नई दुनिया में आए हैं, एक नए वातावरण में आए हैं, एक नया संसार है यहाँ, सब कुछ नया, तो नयापन अच्छा लगता है ना। वहाँ तो फिर जाना ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु यहाँ नए स्थान, नया अनुभव करना है तो अंदर की भी नवीनता चाहिए। और क्या नवीनता लाएंगे, सबसे पहले मन का भी मौन। कुछ भी आपको और अधिक सोचने की जरूरत ही नहीं है, सारे मोबाइल स्विच ऑफ हो सकता है, किसने कर भी दिया है पहले से, अच्छा थोड़ों ने किया है, धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं। और बाकी के अभी पर्स में पड़े हैं ना, हाँ मोबाइल खिलौने है सबके हाथ में, तो मोबाइल आज ही रात तक, भले आज रात तक छुट्टी है, प्रोग्राम के बाद, क्लास के बाद घर में बता दो कि अब मैं आराम से पहुंच गया, पहुंच गई मधुबन, अब मुझे 3 दिन कोई फोन न करे, सबको कह दो 3 दिन बिल्कुल कोई फोन न करे। एक भाई था शिविर में आया था, तो शिविर में उसको बहुत अच्छा लगा, तो फिर चौथे दिन मतलब उसके घर वालों ने फोन किया, क्या हुआ आपने कोई फोन ही नहीं किया क्या, तो वो घर में बताता, अरे आपको क्या बताऊं, मैं तो यहाँ स्वर्गवासी हो गया हूँ। अरे घर वाले बेचारे घबरा गए, स्वर्गवासी हो गया है क्योंकि उसने बाबा की मुरली सुनी होगी, बाबा ने मुरली में कई बार बाबा कहते तुम बच्चे यहाँ जैसे स्वर्गवासी हो, तो कहा मैं तो स्वर्गवासी हो गया, उसको पता ही नहीं चला कि स्वर्गवासी का दूसरा अर्थ भी होता है तो मैं तो यहाँ स्वर्गवासी हो गया हूँ, और यहाँ भी सबको कहे मैं तो यहाँ स्वर्गवासी हो गया हूँ। तब उसको समझाया भाई इसका मतलब ये है, तो पर फिर भी देखो कहा जाता है स्वर्ग में ऐसे नहीं जाया जाता, बिना मरे स्वर्ग में जा सकते हैं ना, बिना मरे भगवान से मिल सकते हैं, मरने के बाद भगवान से भी मिल सकते हैं और स्वर्ग में भी जा सकते हैं। कोई मरता है तो या तो कहेंगे भगवान के पास गया, जिंदा है थोड़ी कहेंगे भगवान के पास गया, मरने के मर गया फिर कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, जिंदा है थोड़ी कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। तो बात तो वैसे सही है कि भगवान से मिलना, स्वर्ग में जाना, उसके लिए मरना पड़ता है, तो बाबा ने हमको मरना तो सिखा दिया है ना, कैसे मरना है, जीते जी सारी दुनिया को भूलना है, आप मुए मर गई दुनिया, तो यहाँ ये 3 दिन अनुभव करना है, आप मुए मर गई दुनिया। देखो इंसान मर जाता है तो उसके लिए तो दुनिया ही मर गई, वो मर गया माना दुनिया सारी उसके लिए मर गई, पर दुनिया उसके लिए तब मरेगी जब पहले खुद मरेगा ऐसे थोड़ी दुनिया मरेगी उसके लिए, परंतु आप खुद मरा तब दुनिया मरी। तो बाबा भी कहते जीते जी मरना है तब दुनिया को भूल सकेंगे, परंतु जीते जी मरना माना छोड़ना कुछ भी नहीं पर भूलना जरूर है, क्योंकि आखिर तो ये सब यहीं रह जाना है। क्या जाएगा बाबा के बच्चों का, हम सबका श्रेष्ठ कर्म, वही आत्मा भाग्य ले जाएगी, वही हम पूंजी साथ में ले जाएंगे, तो इसीलिए जब वही हमारे साथ चलना है तो अभी मौका है, उस पर हम अटेंशन दें, अपने संकल्पों पर अटेंशन दें, क्योंकि कहाँ ये व्यर्थ चले जाते हैं हमारे संकल्प, हमारा श्वास, हमारा समय, हमारी शक्ति, ये कैसे वेस्ट हो जाता है पता भी नहीं चलता है। कई कहते ना मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, वास्तव में कोई भी व्यस्त नहीं है, व्यस्त इसीलिए अपने को समझता है क्योंकि अस्त व्यस्त है ना, ये कहते अस्त व्यस्त है, तभी अपने को व्यस्त समझता है, क्योंकि अगर उसको तरीका आता है कैसे अपने समय को सफल करना है, श्वास संकल्प शक्ति को सफल करना आता है, वो कभी भी नहीं मुख से कहेगा मैं व्यस्त हूँ, उसको पता है कैसे करना है। और बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि जो आपका कारोबार है वो तो भले करो, लेकिन कितना आपका समय श्वास संकल्प शक्ति जो व्यर्थ जाता है उसको सफल करो। अब यहाँ तो वो भी नहीं है जो आपका और कारोबार है, तो तो इसमें तो पूरा ही सफल कर सकते हैं, नहीं ये नहीं कि वो जितना समय मिले उसको सफल, पर यहाँ तो पूरा ही समय उसके लिए है। तो और ये देखना है कि कुछ भी व्यर्थ न जाए यहाँ, कोई भी लीकेज न हो यहाँ, क्योंकि अगर लीकेज होगा तो लगेगा मैं तो भर रहा हूँ, पर वो लीकेज ऐसा सुराख हो जाता है कहाँ बहता जाता है पता भी नहीं चलता। एक बहन थी दादी के पास आई, विदेश की बहन थी, दादी के आगे रोने लगी। दादी ने कहा क्यों रो रही हो, ऐसी क्या बात है जो रो रही हो। कहती है दादी यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ देखो मोबाइल बजना शुरू हो गया। किसका बज रहा है भाई? तो दादी को कहती है दादी यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। दादी ने कहा किस बात का डर, यहाँ कौन सा डर है? तो कहा नहीं दादी वहाँ वापस जाऊंगी तो फिर पता नहीं क्या होगा, फिर पता नहीं क्या होगा, वही मेरे को डर पैदा करा रहा है, पता नहीं वहाँ क्या होगा। तो दादी ने कहा वहाँ कुछ भी होगा, यहाँ तो शक्ति भरो ना, जहाँ आप आई हो जिस स्थान पर आई हो ये शक्ति भरने का स्थल है, यहाँ आप शक्ति भर के जाओ और जब शक्ति भर लेंगी तो वहाँ जा करके आप सहज सामना कर लोगी। अगर अभी ये कह रही हो कि पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या होगा, माना एक सुराख भी साथ साथ है, एक तरफ भर रही हो और दूसरी तरफ वो सुराख से वो शक्ति व्यर्थ भी जा रही है निकल रही है, और आपको लगता है मैं तो भर रही हूँ पर भर नहीं रही हूँ, खाली का खाली है। इसीलिए वहां का यहाँ नहीं सोचो, वहां का यहाँ सोचेंगी तो कभी शक्ति नहीं भर सकेंगी, पर यहाँ से ऐसी शक्ति भर के जाओ जो वो शक्ति आपको इतना काम आए, इतनी आपको मदद करे जो आपके आगे वो जो विघ्न आया वो सूली से कांटा हो जाए या जो भी है वो सूली से कांटा हो जाए। और ये तब होगा जब यहाँ शक्ति भरेंगे, इसलिए यहाँ ही सोचेंगी तो शक्ति भी नहीं भरेंगी और वो बात तो वैसे की वैसे ही रहेगी। तो यहाँ आना माना शक्ति भरना, जैसे बाबा भी कहते हैं मधुबन में आना माना बैटरी को चार्ज करना। अब चार्ज भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं तो क्या होगा, चार्ज होगी क्या? समझो चार्ज पर रखा है और बात भी करते रहते हैं तो चार्ज तो नहीं होगी ना। इसीलिए कई कहते हैं जिस समय चार्ज हो रही ना बैटरी उस समय बात नहीं करो, चार्ज होने दो, क्योंकि नहीं तो फुल चार्ज तो कभी होगी ही नहीं। चार्ज पूरी हो जाए फिर भले करो, मना थोड़ी है। तो इसीलिए चार्ज हो रही, यहाँ चार्ज होने ले आते हैं, इसलिए यहाँ पर यूज नहीं करना है, बैटरी भरना ही है हर वक्त भरना ही है। और दूसरा बाबा कहते हैं ये सागर का कंठा है, सागर के कंठे पर आते हैं बादल भरने के लिए। तो ऐसे भर जाओ, ऐसे भरते जाओ जो कहाँ जाकर बरसना है, जो एकदम कलराठी जमीन है, सूखी जमीन है, बंजर जमीन है, वहां बरसना माना उसको भी सब्ज बनाना, हरा भरा करना। तो यहाँ से इतनी शक्ति भर के जाए जो वहां भी जाकर वो शक्ति बांट सको, परंतु उसके लिए सागर से पूरा योग चाहिए, ज्ञान सूर्य से योग चाहिए और ज्ञान सागर से योग चाहिए, तभी तो बादल भरेंगे ना। सूर्य न हो और सागर न हो तो बादल भरेंगे क्या? दोनों चाहिए, सूर्य भी चाहिए और सागर भी चाहिए, तब बादल भरेंगे। तो बाबा है ज्ञान सागर, ज्ञान सूर्य, उस ज्ञान सूर्य से ज्ञान सागर से हम आत्मा रूपी बादल भरते हैं। और ऐसे भरते जाएं ऐसे न हो कि हवा का झोंका लगे और वो हवा पता नहीं कहाँ उड़ा के ले जाए। उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा भले भरे हुए बादल होते लेकिन हवा आ गई ना, लगेगा अभी पहले बरसात आएगी और हवा ऐसी आई जो वो भरे हुए बादलों को भी उड़ाकर ले जाती है। या अगर बरसते भी है ना बादल, कई बार क्या होता है एसिड रेन होता है, एसिड रेन वो जो बादल जो बने या हवा में कोई ऐसे दूषित ये गैसेस होते हैं, तो वो जैसे ही बादल बरसते हैं तो वो नीचे आते हैं, और जो फायदा करने की बजाय नुकसान करते या ओले पड़ते हैं, तो जो हरी भरी खेत भी होगी ना, वो खेत भी उजड़ जाती है वो ओलों के कारण। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी कौन सी हवा आती है जो भरे हुए बादलों को उड़ा के ले जाती है, या ऐसे कौन से वो जो जहरीले गैस है, ये सब है देह अभिमान रूपी ये सब गैस। तो देह अभिमान आया माना वो भरे हुए बादल को भी उड़ा के ले गया, खाली कर दिया। फिर चलो भरा हुआ होगा भी, और वो सर्विस के बदले क्या करेगा, बाबा ने उस दिन मुरली में कहा, क्या करेगा, डिस सर्विस करेगा। देखो वो सुनाएगा अभिमान से सुनाएगा, तो क्या होगा, अभिमान से सुनाएगा तो कौन उसकी बात सुनेगा, कहेगा पहले अपने को तो देखो। तो इसीलिए अभिमान भी न हो, नम्रता भी हो, अपना स्वमान भी साथ साथ हो, कोई भी अंदर में लीकेज न हो, कोई भी अंदर में विकृति न हो, तो अब तो ये जो तीन दिन है, एक तो और बाहर की बातें सोचने की नहीं है, और दूसरी बात अपनी चेकिंग, हर वक्त अपनी चेकिंग करनी है कि कहीं मुझे देह अभिमान तो नहीं आ रहा है, कहीं मेरे अंदर कोई विकृति तो नहीं आ रही है, कहीं मैं अपना समय श्वास संकल्प शक्ति व्यर्थ तो नहीं गंवा रही हूँ या गंवा रहा हूँ। क्योंकि ये ध्यान देना, जिसको ही हम कहते हैं सही रूप में आत्मचिंतन, उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा सही आत्मचिंतन माना अपनी दृष्टि वृत्ति स्मृति इन सब की चेकिंग, जिसको आत्मनिरीक्षण कहेंगे, आत्मविश्लेषण कहेंगे, और उसके आधार से जो कमियां हैं कमजोरियां हैं वो हमको निकालनी है। क्योंकि भट्टी में आए, भट्टी माना भट्टी में क्या चीज पड़ती है, या जो भी चीज पड़ती है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। कोई भी चीज आग में पड़ी वो बदल जाती है, उसी रूप से बाहर नहीं आती है। अग्नि माना परिवर्तन करने वाली चीज, अगर कोयला डालते हैं अग्नि में तो क्या होता है, राख बन जाएगा। अगर हम आलू बैंगन टमाटर जो थोड़े सख्त है वो आग में डालते हैं तो क्या हो जाता है, नरम हो जाते हैं। अगर हम एकदम नरम मिट्टी की ईंट आग में डालते हैं तो क्या होता है, घट स्ट्रांग हो जाती है। तो मानो जैसी आवश्यकता अग्नि उस रूप को वैसा बनाती है, और उस हिसाब से वो प्रकट होती है। बाबा सोने का मिसाल देते हैं, सोने को अगर खाद वाला है और आग में डाला तो खाद निकल जाती है, सोना सच्चा बन जाता है। तो आत्मा जो सच्चा सोना है, सच्चा सोना थी लेकिन अब उसमें खाद भर गई है, तो यह भट्टी उस खाद को निकालने के लिए है, और उसके लिए योग तपस्या, और उसके लिए आत्मनिरीक्षण आत्मचिंतन आत्मविश्लेषण आत्मसंयम, ये सब आत्मचिंतन के अंदर ही आता है। क्योंकि आत्मा को अपना स्वमान याद आता है, और जब स्वमान याद आता है तो ऑटोमेटिकली निरीक्षण करने से उस स्वमान के आधार से हम अपनी कमियां और कमजोरियां निकाल सकते हैं। तो भट्टी माना एकदम परिवर्तन, तो रोज अपनी ये चेकिंग करनी है कि मेरे अंदर कौन सी कमी या कमजोरी है अब तक। जो बाबा कहते हैं कि कोई कहे क्या करे, हमारा ये पुराना संस्कार है, तो बाबा कहते हैं पुराना थोड़ी है, ये तो द्वापर कलयुग का संस्कार है, अति पुराना एकदम प्राचीन एकदम आदि वो संस्कार तो बहुत ऊंचा है बहुत शुद्ध है, पर ये मेरा संस्कार पुराना संस्कार ये सच्चा सचमुच पुराना नहीं है। तो जो चीज आदि है अनादि है उसको अनुभव करना तो सहज होना चाहिए, जो बाद में आया है उसको भूलना भी सहज होना चाहिए, ये नहीं कि बाद में जो आया वो उसको पुराना कहो और आदि अनादि जो है उसको भूल जाओ। तो इसीलिए कोई ये भी नहीं कह सकते हैं कि क्या करे बाबा ये मेरा पुराना संस्कार है, पुराना है ही नहीं। और अगर कहते हो मेरा तो मैं कौन, मैं आत्मा हूं, तो आत्मा में तो ये संस्कार है ही नहीं, ये तो देहाभिमान के संस्कार है, ये तो रावण के संस्कार है। तो वहां भी बाबा हमको रुकने नहीं देते। और फिर भी कोई कहे मेरा संस्कार, तो ये भी नहीं है, क्योंकि अनादि और आदि संस्कार तो है ही नहीं। अनादि संस्कार तो हमारा परमधाम का संस्कार है, आदि संस्कार हमारा सतयुग का संस्कार है। तो वो संस्कार और अभी के संस्कार में कितना फर्क है। इसलिए बाबा कहते देव क्या बन गए, दानव बन गए। कहां देव थे और कहां दानव बन गए, पर असल में तो देव है ना, दानव तो नहीं है। लेकिन दानव जैसे इंसान आज हो गए हैं, तो फिर से कैसे देव बने वो बाबा हमें सिखाते हैं। तो इसीलिए कैसे ये सब दे अभिमान की बातें निकले, ये सब खाद हमारी निकल जाए, उसके लिए अशरीरी अवस्था, योग तपस्या माना अशरीरी अवस्था, तपना है अंदर, अपनी सारी मैल निकालनी है, अपने अंदर का जो भारीपन है, जो कुछ भी बोझ है, जो कुछ भी अंदर में विकृतियां हैं, वो सब मेरी खत्म हो। और कैसे खत्म होगी, केवल कहने से नहीं, खत्म होगी, खत्म हो, खत्म हो, खत्म हो, ऐसे खत्म नहीं होगी। खत्म हो कहने से नहीं होगी, पर ये है ही नहीं, मैं ये हूं ही नहीं, तो आदि अनादि को याद करने से ये खत्म होगी। कई बार होता है ना, हम जब कमेंट्री कराते हैं तो हम कहते हैं मैं आत्मा शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, तो ये जब कमेंट्री अपने को देते हैं तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन कई है जो कहते हैं बहन जी आप कहते तो हो मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, लेकिन मेरा तो मन खाता है, मैं तो हूँ नहीं मैं शुद्ध पवित्र हूँ नहीं, तो मैं कैसे कहूँ मैं शुद्ध और पवित्र हूँ। तो वास्तव में क्या है, ये क्यों नहीं कहते मैं शुद्ध पवित्र हूँ, क्योंकि जो इस जन्म में बहुत कुछ पाप किए हैं वो याद आते हैं। अब बाबा कहते वो याद नहीं आने चाहिए, क्योंकि नया जन्म लिया है। जैसे नए जन्म में पुरानी बातें थोड़ी याद रहती है, पुरानी जन्म की बातें याद है क्या, है ही नहीं। तो कोई अगर हम कहते मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, तो कोई सोचे मैं तो हूं नहीं माना, पहले क्या कर रहा है वो, जो इस जीवन में की जो पहली बातें वो याद आ रही है। ज्ञान में आने के बाद तो परिवर्तन आया ना, क्योंकि पता चला कि मैं कितनी शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। तो चलो नहीं भी है, पर अगर बनना है तो क्या करना होगा। अगर यही कहूंगी मैं तो नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं, तो हो जाऊंगी क्या, हो जाऊंगी क्या शुद्ध और पवित्र। तो अगर होना है तो कैसे होंगे। भक्ति में तो हम क्या कहते थे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, हे भगवान मेरे पाप हरो, मुझे पवित्र बनाओ, खाली भिखारी बन के मांगते थे। तो बाबा कहते मुझे कहते हो ये करो, आप ही करो ना खुद ही करो ना। अग्नि को कहो कि अग्नि मेरी खाद निकालो, मेरी खाद निकालो, तो निकालेगी क्या अग्नि, पड़ो ना अग्नि में। अग्नि में पड़ेंगे तभी तो अपने आप खाद निकलेगी, क्योंकि अग्नि का काम ही वो है। तो मेरा निकालो, मेरे पाप हरो, मुझे शक्ति दो, भगवान शांति दो। तो बाबा कहते मांगते मांगते क्या हो गया, हाँ भिखारी के भिखारी रह गए, वो तो हमसे कोसों दूर हो गए। इसीलिए का बिंद मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो ये भीख के रूप में हम भगवान से शांति मांगते थे, पवित्रता मांगते थे, शक्ति मांगते थे। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते वो भीख भी नहीं मिली, क्योंकि और ही कोसों दूर हो गए। लेकिन कैसे लेना है, ये अधिकार से लेना है, भीख मांगकर नहीं लेना है। अधिकार से लेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। भिखारी बन के लेंगे तो भिखारी को कितना मिलेगा। अगर कोई भिखारी आपके सामने आए, आपको कहे साहब हमको 10 रुपया दो, आप कहेंगे काहे को 10 रुपया देंगे, 1 रुपया बस है, चलो मांग रहे हो दो, तो 10 रुपया देंगे क्या, 100 रुपया देंगे क्या? पर आपका बेटा आपको 10 रुपया मांगे, समझो कहता है डैडी 10 रुपया चाहिए, ये नहीं कहेगा डैडी 10 रुपया दो चाहिए, तो आपके पास 10 रुपया नहीं है, तो आप कहेंगे बेटा कोई बात नहीं 100 रुपया ले लो, फिर देखना हा? तो 10 का 100 दे देंगे और भिखारी को 10 का 1 भी नहीं देंगे। तो क्या बन गए थे हम, हा? भिखारी। तो भिखारी से बाबा अधिकारी बनाते, रंक से राव बनाते, कंगाल से सिरताज बनाते, मोहताज से राजाओं का राजा बनाते हैं। तो कैसे ये सब है, सिर्फ संकल्पों का परिवर्तन है और कुछ नहीं। जो आज भी बाबा ने कहा पवित्रता, पवित्रता ही तुम्हें राज्य भाग्य देगी, पवित्रता ही तुम्हें स्वर्ग का अधिकार देगी, पवित्रता से ही तुम सारे विश्व को बदल देते हो। कई बार बाबा कहते हैं कि दुनिया में पहले लोग आते थे ना यहाँ, तो ये कहते थे, पहले तो सुनना ही नहीं चाहते थे, नहीं 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 जादू लग जाएगा, जादू लग जाएगा। अभी समझते हैं यहाँ बातें तो बहुत अच्छी सुनाई जाती है, तो सुनने के लिए आते हैं, लेकिन फिर क्या कहते हैं कि आप लोग जो सुनाते हैं ना बहुत अच्छा सुनाते, पर वो भी ऐसा ही सुनाते हैं, वो लोग भी ऐसे ही सुनाते हैं जैसे आप लोग सुनाते हो, और सत्संगों में जाते हैं वो भी बहुत बहन जी बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, आप भी अच्छी सुनाते हो, चलो वो तो परिवर्तन हो गया कि जादू लगता है, ये होता है वो होता है, आप लोग अच्छी बातें सुनाते हो। तो बाबा कहते वो आप वो लोग क्या कहते आप भी, पर वो समय आएगा जब भी शब्द बदल करके ही आ जाएगा, आप ही, आप भी नहीं लेकिन आप ही, पर वो किस आधार पर होगा, किस आधार पर, पवित्रता के आधार पर, क्योंकि सब की गदियां हिलेगी, भले वो अभी वाणी द्वारा तो बहुत अच्छा सुनाते, लेकिन जो आत्मशुद्धि चाहिए, पवित्रता चाहिए, परमात्मा से योग चाहिए, शक्ति चाहिए, उस रूप से नहीं है, नहीं है। इसीलिए भले आत्मा के अंदर वो हो सकता है नई आत्मा हो, वो संस्कार होंगे अच्छे, क्योंकि सतो स्थिति है, अभी नई आत्माएं आई है तो अपना मठ पंथ शुरू किया है, तो वो शक्ति भरी हुई है, लेकिन परमात्मा से फिर भी योग नहीं है, वो अभिमान में आ जाते हैं, मैं इतना अच्छा बोलता हूँ, मैं ये अच्छा करता हूँ, मैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, हा? वो शक्ति उनकी कम होती जाए, क्योंकि योग नहीं ना, बैटरी तो चार्ज तब हो जब पावर हाउस से कनेक्शन हो, और वो तो है नहीं, तो इसीलिए धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, और जैसे कम होता गया तो शक्ति कम होती जाएगी, तो फिर भी बदल जाएगा, क्योंकि पवित्रता की भी शक्ति कम हो जाएगी। आज जितनी भी संस्थाएं हैं क्यों इतनी फूट पड़ती जा रही है, हाँ क्यों इतना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है पवित्रता की, फिर दूसरा है धन की, क्योंकि धन पर भी झगड़े होते, और तीसरा है गद्दी की, गद्दी धन और धारणा जो पवित्रता की, और धीरे धीरे ये सब क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि धारणा कम होती जा रही, फिर धन की भी बात तेरा मेरा आ जाता है, पर्सनल हो जाता है, और फिर गद्दी भी क्यों, क्योंकि भाई भतीजावाद है, वो फलाना गुरु है तो उसका भतीजा बैठेगा, भांजा बैठेगा, फलाना बैठेगा, हा? तो वो हो जाता है, उसकी धारणा कितनी है वो नहीं देखेंगे, तो यहाँ ये भाई भतीजावाद हो गया तो वो भी शक्ति खत्म हो गई। तो इसीलिए बाबा कहते यहाँ वो तीनों ही नहीं है, क्यों, हमारी दादियां देखो कितनी योग तपस्या क्या नहीं है, देखो तो उनको तो कैसे आत्मा उड़ जाए उनके सानिध्य में आकर के, और यहाँ पैसे की तो बात ही नहीं, दादी जान की तो ये कहती है जेब खाली और मैं हूँ सारी दुनिया का वाली। जेब खाली, कभी मैं बटुआ अपने साथ नहीं रखती, कुछ भी नहीं, मिसाल देती है दादी, एक बार 13 रुपया किसी ने मुझको 13 रुपया दिया, तो वो मेरे पास थे और पता नहीं कहाँ गिर गए, पता ही नहीं चला, 13 रुपया मैंने गुम कर दिया, बहुत ख्याल चला, उसके बाद मैंने कहा मैं पैसों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, पैसे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, बाबा भी नहीं लगाते थे, इसलिए देखो भंडारी सिस्टम है, ये भंडारी सिस्टम उस अनुसार वैसे चलता है। तो चलो कोई देते भी है तो बाबा को देते, हमको नहीं देते, हम अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं, बाबा के लिए। तो बीच में बाबा को लाते हैं, और जब बाबा को लाते हैं माना अपना पर्सनल हिसाब किताब कुछ भी नहीं, वो बाबा को देते, हम बाबा से लेते हैं। तो इसलिए कोई देधारी की याद नहीं, तो इसीलिए बाबा कहते वो भी याद नहीं, ट्रस्ट है, सब है, उसके अंतर्गत है सारा यज्ञ का है, हम ट्रस्टी हैं। और तीसरा गद्दी की तो यहाँ बात ही नहीं, तो परिवार है, गद्दी तो वहां होती जहां गुरु होता है, यहाँ तो वो तो है ही नहीं, सतगुरु तो हमारा एक शिव बाबा ही है। तो इसीलिए आप भी नहीं, लेकिन वो समय आएगा, क्योंकि बाबा ने लक्ष्य बहुत ऊंचा दिया है, तो उस लक्ष्य के मुताबिक अगर हम सचमुच चलते हैं तो अंत में बाबा कहते हैं ये साधु सन्यासी भी आकर के आपके आगे झुकेंगे। क्यों नहीं झुकेंगे? इसलिए का कन्याओं ने बाण मारा, भीष्म पिता में जैसे को भी सलाम करना पड़ा, तो ये सब कहाँ जाएंगे? अंत की स्थिति में क्या होगा कि जब राजाएं महाराजाएं और ये सन्यासी ये झुके, समझो अभी अंत, अभी जय जयकार की स्थिति है, और दुनिया में तो हाहाकार होगा। इसीलिए बाबा कहते तुम्हारी चढ़ती कला है, और तुम्हारे आधार पर दुनिया की चढ़ती कला होगी, स्वर्ग बनेगा, लेकिन उसके पहले तो तमो प्रधान स्थिति तक आना ही है। तो इसीलिए ये जो बठियां बीच बीच में रखते हैं ताकि बिल्कुल क्वारंटाइन में रहो, क्वारंटाइन बाबा शब्द यूज करते हैं, विदेश जाते हैं ना, तो समझो वहां से कहीं ऐसे जीवाणु ले आए, कीटाणु ले आए, कोई बीमारी लाए, तो क्या करते, क्वारंटाइन में रखते हैं। क्वारंटाइन में माना 3 दिन बिल्कुल आइसोलेशन में, सबसे दूर, ताकि वो बीमारी खत्म हो जाए और फिर उनको एंट्री देते जाओ देश में। तो इसीलिए मधुबन में आना माना दुनिया के जो हवाएं हैं ना उनसे दूर बिल्कुल क्वारंटाइन में पहुंच जाना, अग्नि के अंदर स्वाहा हो जाना, तो एकदम आत्मा परिवर्तित हो जाए, ये पहला लक्ष्य है हमारा। तो ये 3 दिन ये लक्ष्य बुद्धि में रख करके यहाँ पर सारा अंदर का पुरुषार्थ करना, एक लिस्ट निकालना क्या क्या मेरे अंदर कमजोरियां हैं, और जैसे वो कमजोरी मिटती जाए वो उसको इरेज करते जाओ, उसको खत्म करते जाओ, तो ये भी एक पुरुषार्थ का एक सुंदर तरीका है। और दूसरा, बाबा ने बहुत ऊंचा उद्देश्य दिया है, क्योंकि कई फिर इसी में खुश हो जाते हैं, कैसे, बहन जी में तो बहुत बदल गया, हाँ बहुत, वहां जाएंगे ना कहेंगे बहन जी में तो बहुत बदल गया, सचमुच बट्टी से एकदम मेरे अंदर इतना परिवर्तन आ गया जो बात नहीं पूछो। पर बाबा वहां भी नहीं छोड़ते हैं, परिवर्तन आया तो भी क्या खुश हो गए क्या, कहाँ तक परिवर्तन लाना है, कहाँ तक लाना है परिवर्तन, जो बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, एक भी दाग न रहे हीरे में, इतने तक पर संपूर्ण बनना है। तो संपूर्ण माना संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना ही पवित्र आत्मा बने जो स्वप्न मात्र भी कोई अपवित्रता न हो, इसलिए बाबा स्वप्न कहते हैं, संकल्प मात्र नहीं। पहले आपको मालूम होगा साकार मुरलियां जब बाबा की चलती थी, अभी भी हम सुनते रिवाइज करते, तो बाबा कहते बच्चे कर्म में नहीं लाना है, अगर संकल्प में आए कोई बात नहीं, पर कर्म में नहीं लाना है, क्योंकि कर्म में लाया तो पाप बन जाएगा। चलो संकल्प में लाया, चलो कोई बात नहीं, पर अभी अव्यक्त मुरलियों में बाबा ऐसे नहीं कहते, क्या कहते, संकल्प तो क्या स्वप्न मात्र भी नहीं, तब कहेंगे सबसे ऊंची पवित्रता। तो स्वप्न मात्र क्यों बाबा कहते, संकल्प तक ही क्यों नहीं पूरा करते, क्योंकि संकल्प तो फिर भी हमारे अपने हाथ में है, क्या हम संकल्प कर रहे हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ध्यान अगर है तो जो नहीं करना चाहिए हम उसको रोक सकते हैं। पर स्वप्न हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वो स्वप्न क्यों अगर गंदे आते भी हैं, वो क्यों आते हैं, क्योंकि अभी तक वो पुराने संस्कार, जो विकारी संस्कार वो है, वो खत्म नहीं हुए। और स्वप्न उसी आधार पर आते हैं, वो सबकॉन्शियसनेस काम करता है। तो अगर स्वप्न में आते हैं माना अभी तक वो है, इतनी अभी संपूर्ण पवित्रता आई नहीं है, तो वहां तक भी न आए इतने हद तक हमको पवित्र बनना है। तो उतने हद तक पवित्र बनने के लिए संकल्प तक तो रोको, क्योंकि संकल्प में रोका तो चलो स्वप्न में भी खत्म हो जाएगा, भले वो अपने हाथ में नहीं है, पर वो भी तो संकल्प के आधार पर ही तो आता है स्वप्न भी। तो इसीलिए बाबा यहां तक हमको पवित्रता की बात करते हैं। बाप समान बनना है, इतना पावन बनना है, संपूर्ण बनना है, जो धर्मराज की सजाएं न खाओ। बाबा नहीं चाहते कि बाबा के बच्चे धर्मराज की सजा खाए, बाबा का सिर झुक जाएगा कि मेरा बच्चा होकर के धर्मराज की सजा खाए। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, एक दाग भी न रहे, इतने हद तक संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, देवता बनना है, इतना ऊंचा बाबा ने हमें उद्देश्य दिया है। कई बाबा कहते हैं ना, पूछते हैं लोग आप लोगों से आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, तो हम क्या जवाब देते हैं, हाँ जीवन में मूल्य धारण करना ये तो बड़ी चीज नहीं हो तो सभी कहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा उद्देश्य क्या है, हाँ मनुष्य से देवता बनना, ये कितना बड़ा उद्देश्य है। फिर वो देवता में भी और आगे उद्देश्य क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना, राम सीता भी नहीं, बाबा कहते वो भी नहीं, कितना ऊंचा नंबर वन। फिर बाबा कहते नंबर वन तो फिक्स हो गए, नंबर वन तो लक्ष्मी नारायण फिक्स हो गए हमारे मम्मा बाबा, लेकिन कम से कम उनको फॉलो तो कर सकते हैं, हाँ इनकी तख्त नशीन तो बन सकते हैं ना, वो तो अभी तक किसी का आउट नहीं हुआ है। आउट हुआ है सेकंड लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, आउट तो हुआ नहीं ना। मैं कई बार एक हंसी जी वो आउट हुआ है, सब कुर्सियां खाली है, एक हंसी की बात मैं सुनाती हूँ। दादी प्रकाशमणि के साथ हम रहते थे मधुबन में, तो विदेशी आते थे, दादी से मिलते थे, तो अधिकतर मैं होती थी, ट्रांसलेशन करती थी दादी को विदेशियों का। तो एक भाई था बड़ा रमणीक, तो दादी को कहता है, दादी जी मुझे पूरा विश्वास है कि आप सेकंड नारायण बनोगी, दादी को कहता है। तो दादी उनको देख रही, दादी ने कहा, किसने कहा, बाबा ने कहा है, बाबा ने तो हमको तो नहीं कहा है ऐसे दादी होती थी बड़ी जैसे ना इनोसेंट, बाबा ने मुझे तो अभी तक नहीं कहा है कि तुम सेकंड नारायण बनोगी, परंतु दादी जी मुझे पूरा विश्वास है आप सेकंड नारायण जरूर बनोगी। तो दादी उनको देखकर मुस्कुरा करके, आप भी बन सकते हो, आप भी बन सकते हो, सब सीटें खाली है। तो एकदम हैरान हो गया, आश्चर्य, मैं बन सकता हूँ, कभी उसने सोचा भी नहीं होगा कि दादी मुझे ऐसे कहेगी कि तुम भी बन सकते हो। लेकिन उसके बाद इतना उसको नशा चढ़ गया, दादी ने मुझे वरदान दिया कि मैं भी सेकंड नारायण बन सकता हूँ। मतलब हंसी की बात है, लेकिन कहने का भाव है कि अभी तक तो डिक्लेयर तो हुआ नहीं है, तो इसीलिए रेस तो जारी है। वो तो चलो वो ओलंपिक्स में रेस करते, कल बड़ा जबरदस्त हुआ था, पता नहीं आप लोगों को मालूम हुआ होगा, हाँ भारत को वो बहन एक क्या नाम, हाँ तो सिंधु उसको चांदी का मेडल मिला, सिल्वर मेडल मिला, और उसके पहले एक थी दूसरी, उसको साक्षी, उसको तांबे का मिला। तो माना खाता खोला, क्योंकि इतने सब कहां, अमेरिका ने 50-50 ले लिए, 70-70 ले लिए, चाइना ने इतना ले लिया, इंडिया को एक भी मेडल नहीं। तो उसने खा, हाँ वो आप आपको भी आया होगा व्हाट्सएप में। तो वहाँ पर हमारा एक भाई है जगबीर भाई, जो स्पोर्ट्स विंग का है, वो उनको भी निमंत्रण था, वो रियो गया है ब्राजील में, तो उनको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि फिजिकली होते पर मेंटली कई बार नहीं होते, तो वहाँ मानसिकता वो स्ट्रांग न होने के कारण भी फेल हो जाते हैं, तो इसीलिए वो भी गया। और जो बहन जिसको कल चांदी का मेडल मिला, वो हैदराबाद में सेंटर पर गई थी, वहाँ हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद का जो अपना शांति सरोवर रिट्रीट प्लेस है उसके पीछे ही बहुत बड़ा ये कॉम्प्लेक्स है जहाँ बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, तो वहां से वो सेंटर पर आई थी और सेंटर पर बाबा से जैसे आशीर्वाद लेकर के गई। तो ये भी देखो, तो इसीलिए वो मेडल तो है पर फिर भी गोल्ड मेडल अभी तक नहीं मिला। पर हमारा लक्ष्य क्या है, गोल्डन एज में जाना है ना, तो सिल्वर एज चलेगा क्या, चांदी का युग त्रेता युग चलेगा, बाबा कहते नहीं, सत्युगी दुनिया में आना है। तो कई जो कहते हैं ना, मैं तो बहुत बदल गया बहुत बदल गया, इसका मतलब वो जीरो से अपना परिवर्तन देख रहे। कोई सदा ही फेल होता रहता है, वो तो जीरो से ही देखेगा ना, एक बार पास हो गया, अरे मैं तो पास हो गया, मैं तो पास हो गया, लड्डू बांटेगा, मैं तो पास हो गया। लेकिन जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, बहुत होशियार होता है, अगर उसको 80% मिला, 90% मिला, 98 भी मिला, तो भी क्या कहेगा, मेरा 2% कहाँ गया, मुझे 100 out of 100 मिलना चाहिए था, मेरा 2% भी कम क्यों हुआ। तो वो जो होशियार होगा वो 100 से देखेगा, और जो बेचारा ऐसा ही है तो वो क्या, थोड़ा ही पास हो गया तो खुश हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, हाँ बस मैं बहुत बदल गई, मैं बहुत बदल गई, इसी खुशी में रहना है क्या, क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है। हाँ, तो कहाँ तक पहुँचना है, संपूर्ण बनना है, संपूर्ण बनना है, लक्ष्मी नारायण समान बनना है, इतना ऊंचा बनना है, इतना पावन बनना है, जो स्वप्न मात्र भी कोई अपवित्रता ना आए, इतने हद तक हमको ऊंचाई तक जाना है, तभी तो बाबा कहते तुम बाप को प्रत्यक्ष कर सकोगे, अंत में तुम्हारी जय जयकार होगी, इतनी अंतर की पवित्रता होगी तो, इतना अपने जीवन में परिवर्तन आएगा तो। भले कहेंगे हम सब पुरुषार्थी है, वो तो समझते पुरुषार्थी है, कई कहते ना इतना जल्दी थोड़ी होगा बहन जी, 63 जन्मों के हिसाब किताब है, ये है वो है, वो तो है, अंत में तो ये तो और भी बढ़नी है, ये जो हिसाब किताब है, जो बाहर के प्रेशर्स हैं, ये सारी जो भी समस्याएं हैं, वो कम थोड़ी होने वाली है कम, वो तो और ही बढ़ेगी, ऐसे नहीं समझना कि वो कम होगी, लेकिन वो सब कुछ होते हुए भी मेरी स्थिति इतनी ऊंची रहे, उसके लिए कितनी तैयारी चाहिए, कितनी तैयारी चाहिए। इस पर वो मैनेजमेंट में एक कहानी सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं कि मेंढकों की रेस हुई, वो पहाड़ी पर उनको चढ़ना था, मेंढक तो चढ़ने लगे, तो जैसे ही चढ़ने लगे ना, लोग कह रहे, अरे तुम तो कभी नहीं पहुंचोगे, तुम तो कभी नहीं पहुंचे, वो सुन रहे थे, तो धीरे 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 धीरे, क्या तुम तो कहाँ पहुंचोगे, बहुत ऊंचा है, बहुत मेहनत है, बहुत है, नहीं चढ़ सकोगे। तो अभी लोग, वो जो मेंढक सुनते 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 धीरे धीरे गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए, एक एक करके गिरता गए, गिरते गए, गिरते गए, पर एक मेंढक जरा भी नहीं हिला, और वो बिल्कुल एक रस होकर के चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, पहुंच गया। तो लोगों ने पूछा, ये कैसे पहुंचा, कहते वो तो बहरा था। वो बहरा था तो सुन थोड़ी सकता था, और बाकियों ने क्या किया, वो सुनते गए तो वही सोचने लगे, हाँ मैं, हम नहीं पहुंच सकेंगे, नहीं पहुंच सकेंगे, नहीं पहुंच सकेंगे, तो धीरे धीरे नीचे गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए, पर एक ने सुना ही नहीं, क्योंकि सुना ही नहीं देता था उसको, तो पहुंच गया। तो हमको क्या करना है, सुनना है सबका। हमको किसका सुनना है, हाँ बाबा का सुनना है, क्योंकि बाबा जो कुछ कहते वही श्रीमत है, वही आत्मा को पावन बनाएगी, बाकी तो मनुष्य मत जो भी है पर मत है, यहाँ तक कि बाबा कहते हैं मन मत भी परमत का रूप है, क्योंकि अगर मन मत भी आती है ना तो वो भी तो जो द्वापर कलयुग के संस्कार है उसी अनुसार ही मन मत है वो, क्योंकि देह अभिमान में है तो वो भी परमत का रूप हो गया। तो इसीलिए बाबा कहते ये सारे पर काट दो, परंतु एक पर जोड़ना है। वो कौन सा पर है? हा? परोपकार, ये पर जरूर जोड़ना है। बाकी पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानी, पर मत, पर ये सब खत्म। पर दृष्टि या जो भी कहो, ये सब जो पर की बात है ना, दूसरों की बात, ये सब खत्म। ये सब पर माना पंख काटने हैं, पर माना पंख भी, पर एक पर जरूर जोड़ना है, वो है परोपकार। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब आगे बढ़े। तो जब ये बुद्धि में होगा और लगन बाबा के साथ है और सबको आगे भी बढ़ा रहे हैं, सबके प्रति सहानुभूति भी है, शुभ चिंतक भी है, शुभ चिंतन भी है, तो हमारा अपना चिंतन थोड़ी कम होगा। लेकिन अगर पर चले तो खुद भी कहाँ आगे बढ़ सकेंगे। तो इसीलिए इतना ऊंचा जाना है। देखो ब्रह्मा बाबा ने, ब्रह्मा कैसे संपूर्णता को पाया। ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई और सामने था ही नहीं, भले शिव बाबा की उनमें प्रवेशता थी और जो शिव बाबा कहते थे उस अनुसार बाबा पूरी श्रीमत का पालन करते थे। लेकिन तो बाबा कहते हैं कि वो श्रीमत का पालन करते थे, लेकिन बाबा के सामने तो कोई नहीं था ना जिनको देख करके बाबा फॉलो करे। दादियों के आगे भी बाबा थे और दादियों ने बाबा को देखा और फॉलो किया, पर बाबा के सामने कौन था? बाबा तो अपने परिवार में थे, लेकिन बस एक बल, एक भरोसे पर बाबा चले। बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, जो उनकी श्रीमत। शिव बाबा ने कहा कि बच्चे आपका जितना भी धन है, जो भी संपत्ति है, चल अचल प्रॉपर्टी, सब माताओं बहनों के आगे सुपुर्द कर दो। बाबा ने एक बार भी नहीं सोचा कि फिर क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हमारी पालना होगी, कुछ भी नहीं सोचा। बस शिव बाबा ने कहा एक धक से। शिव बाबा ने कहा कि अभी ये भट्टी बननी है, भट्टी बननी, इतनी सब बहने आती गई। बाबा को एक बार भी संकल्प नहीं आया कि इतने सबको मैं खिलाऊंगा कैसे, मैं कैसे करूंगा। शिव बाबा का कार्य, एक बल एक भरोसे पर बाबा थे। इतनी परीक्षाएं आई बाबा के सामने, क्या नहीं कलंक लगे बाबा के। कलंक सुनाते ना बाबा, कि लोगों ने क्या कहा कि इतनी सब, अभी 300 इसको रानियां मिली है, ये कहता मैं कृष्ण हूँ और इनमें मुझे 16108 रानियां चाहिए। तो देखो ये कितना कलंक ना। बाबा को अपनी अपना परिवार तो था ही, उनकी युगल भी उनके साथ ही थी, पर बाबा के आगे तो सब बच्चे थे। तो इसीलिए उस सत्यता के आगे, बाबा के सामने जो भी परीक्षाएं आए, बाबा झुके नहीं। और देखो सत्य की तो आखिर जीत होती है। इतनी परीक्षाएं बाबा के सामने आई और बाबा यही कहते थे, बच्चे नथिंग न्यू। कैसे बाबा अडिग रहे? बच्चे नथिंग न्यू, जो कल्प पहले हुआ था वैसे ही हो रहा है, कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। कभी कभी बाबा को आता था, बाबा शिव बाबा को बाबा कहते थे, बाबा शिव बाबा की प्रवेशता जब तक नहीं हुई थी तो बाबा का कितना मान था, समाज में बहुत मान था। लखीराज बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे बाबा, हैदराबाद सिंध में जौहरी थे ना, बहुत हीरे जवाहरातों का बिजनेस था उनका, उनकी ज्वेलरी बनाते थे, राजाओं महाराजाओं के साथ, अंग्रेजों के साथ उनका उठना बैठना था, तो इतना सम्मान था। पर जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई, ग्लानी शुरू हो गई, ये क्या पराई स्त्रियां है, ये फलाना फलाना, कितनी बातें हुई। बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो परमात्मा की शक्ति काम करे। लेकिन लोग परमात्मा को थोड़ी देखेंगे, तो उनको ही देखेंगे ना, बाबा ब्रह्मा बाबा को ही देखते थे, साकार में तो वही सामने थे। तभी बाबा कहते थे जैसे ट्रेन चलती है, तूफान आता है तो पहले तो इंजन को लगेगा, कोई भी अगर कोई हुआ कुछ भी तो पहले जो मुख्य है उसी पर ही उंगली जाएगी ना, तो इसलिए बाबा के ऊपर ही सारी बातें आती थी। और बाबा तो बिल्कुल कैसे अडिग थे, अडोल थे, क्योंकि एक बल एक भरोसा था, बच्चे नथिंग न्यू। पर कभी कभी बाबा को थोड़ा होता था और शिव बाबा को कहते थे, बाबा ये क्या, मैं जब ज्ञान में था तो बड़ा ठाट था बाबा, शिव बाबा आपकी प्रवेश तो होने से ये सारी विघ्न आए। तो बाबा कहते थे, कोई बात नहीं, आपने भी मेरी बहुत ग्लानी की है भक्ति में। नहीं, बाबा की मुरली में आता है सर्वव्यापी कहना, कुत्ते बिल्ले में कहना, पत्थर कण कण में कहना, कितनी बड़ी ग्लानी, भगवान की ग्लानी। जबकि वो पिता है, वो तो कितना ऊंचा है, कितना पावन है, तो उसकी ग्लानी की तो कोई बात नहीं, बच्चे आपने भी ग्लानी की तो अभी थोड़ी तुम भी ग्लानी खाओ, हर जाने। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने खुशी खुशी उसको स्वीकारा, लेकिन एक बल एक भरोसे पर रहे, तभी तो कैसे ये बाबा का कार्य चला। तो हम आत्माएं भी इतना ऊंचा लक्ष्य रखे, हमको क्या बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं, ये सत्संग केवल नहीं है, या कथा वार्ता सुनी, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, नहीं, ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में लक्ष्य होता है, पढ़ाई में हाँ स्टेटस होता है, डिग्री मिलती है, बहुत कुछ होता है, कमाई होती है। तो ये सब पढ़ाई भी है, कमाई भी है, सफाई भी है, लड़ाई भी है, हाँ? लेकिन इन सब में चढ़ाई भी है, ऊंचे उठ रहे। कल से आज हमारी स्थिति और अच्छी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कल अच्छी थी आज अच्छी नहीं है, क्यों ऐसे हो, आज उनसे और ऊंची चाहिए। कल आने वाला वो आज से और अच्छी चाहिए। तो ये तब होगा जब अपनी चेकिंग करते रहेंगे, क्या बनना है। तो 100 से अपनी गिनती करना, 0 से नहीं। ये नहीं बाबा बहन जी क्या बताऊं, मैं तो बहुत शराब पीता था, मैं तो बहुत सिगरेट पीता था, मैं तो बहुत गुस्से वाला था, बहन जी ये सब मेरे अंदर था, बहन जी ये बहुत बदल गया हूँ, और बहुत बदल गया के खुश हो जाते हैं, हाँ बदल गया हूँ। लेकिन भट्टी में किस लिए आए हो, वो तो बदल गए, अभी और कितना बदल रहा है, कितना बदल रहा है, हाँ? देवता बन के निकलना है। हम लोगों का एक चित्र है कि कैसे युगल के रूप में आए और भट्टी है, एकदम वो यज्ञ कुंड है, उस यज्ञ कुंड में सब स्वाहा किया और आए, अंदर आए तो बिल्कुल मना साधारण, और जैसे यज्ञ कुंड से निकले तो लक्ष्मी नारायण बन के निकले, हा? संगम युग का जो चित्र है उसमें ऐसे है। तो इसीलिए मधुबन माना पूरा संगम, भगवान का ये दर है, ये घर है। तो भगवान के दर पर आना, हरिद्वार में आना, माना सारे पाप अपने खत्म करके जाना। तो मधुबन में ये 4 धाम की यात्रा आप करेंगे, ब्रह्मा बाबा का यादगार स्थान। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या अपने जीवन में किया जो इतना जल्दी संपूर्णता को प्राप्त किया, और हम भी कैसे उनको फॉलो करें। इसलिए मधुबन में आपको रहने का मौका मिला, ये भट्टी आप कर रहे हैं। तो ये 4 धाम की यात्रा सुबह शाम आपको करनी है। कैसे क्या अनुभव करेंगे इन 4 धामों में, आपके टाइम टेबल में ये भी लिखा है 4 धाम की यात्रा। तो बाबा की झोपड़ी, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, ये ब्रह्मा बाबा की यादगार के 4 स्थान है, 4 धाम है। तो 4 धाम की यात्रा रोज करनी है। और क्या अनुभव करना है, झोपड़ी में क्या अनुभव करेंगे, झोपड़ी में बाबा जब बैठते थे, दिन के समय बाबा बैठते थे और बच्चों से मिलते थे, व्यक्तिगत मुलाकात बाबा करते थे, और कुछ उनको अपनी कुछ बातें बाबा को कहनी होती थी, माना कुछ ऐसे प्राइवेट बातें तो बाबा को सुनाते थे। तो मानो बाबा के संग, चाहे शिव बाबा ब्रह्मातन में, वो हम अनुभव कर सकते हैं, बाबा बाबा की झोपड़ी में बैठे हैं और मैं बाबा को सखा रूप में देख रहा हूँ। तो अंदर में जो भी बातें हैं, दिल की बातें, वो सब बाबा को सुनाओ, दिल की बातें। बाबा कई बार कहते हैं मुझे यूज करो, तो कैसे बाबा को यूज करेंगे? दिल की बातें बाबा को सुना करके जो बोझ है ना थोड़ा अंदर, वो बाबा को दे दो। बाबा अब आप संभालो, ये बोझ आपका, आपको ही इसको ठीक करना है। अगर मन में कोई बात अड़चन बन के आ रही है, योग लगाने में मेहनत लग रही है, विघ्न आ रहा है, कुछ भी ऐसी बात है, भारीपन ला रहा है, तो बाबा की झोपड़ी में बैठ करके वो बोझ बाबा को दे दो और बाबा को कहो, बाबा अभी आप जानो आपका कार्य, मैं तो आपके पास वहा ये झोपड़ी में सखा बन के सुनाओ। क्योंकि बड़ा है बाबा, उस रूप से सुनाएंगे तो मुश्किल होता है, बड़ों को कैसे सुनाएंगे। और फ्रेंड है तो फ्रेंड को तो सब बातें सुनाएंगे, जो माँ बाप को नहीं सुनाएंगे वो दोस्तों को सुनाएंगे। तो बाबा को दोस्त बना लो और बाबा को बताओ, और बाबा आपका ऐसा दोस्त होगा जो आपकी सीक्रेट्स किसी को बताएगा नहीं, इसलिए चिंता नहीं करना, आपकी सीक्रेट्स आपके पास ही रहेगी, जो भी आपके जो भी बातें हैं आपकी वो आपकी है, बस बाबा को सुनाई और बाबा उसको यज्ञ कुंड है ना उसमें स्वाहा हो गई, बात खत्म। तो इसीलिए आगे नहीं बढ़ेगी, किसी और को सुनाएंगे तो क्या होगा, हाँ भले उसको कितना भी कहो किसको सुनाना नहीं, किसको सुनाना नहीं, और फिर देखो दो दिन के बाद सबको पता चल गई, क्योंकि वो भी किसी को कहेगा सुनाना नहीं सुनाना नहीं, आपको ही सुनाना, वो क्या, वो फिर किसी और को कहेगा और बात तो इतनी होगी और दो दिन के बाद पता नहीं कितनी बड़ी बात हो जाती, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, बात का बतंगर बन जाता है जिसको बाबा कहते हैं। तो इसीलिए बाबा को बताओ, और बाबा को बता दिया, दिल हल्का कर लिया, तो बस आपको लगेगा बस बाबा ने मेरा सारा बोझ उठा लिया। तो सखा रूप में बाबा को झोपड़ी में जाकर के बिल्कुल बाबा और मैं और कोई नहीं, फिर बाबा के कमरे में क्या करेंगे, बाबा के कमरे में माता पिता की गोद में विश्राम करो, जैसे छोटा बच्चा होता है ना माँ बाप की गोद में जाता है, तो बाबा की गोद में हम जाते थे, इसलिए नीचे जो गद्दी बिछी हुई ना बाबा के कमरे में, वहां पर हम बाबा से ग्रुप में मिलते थे, फिर एक एक करके बाबा की गोद में जाते थे, बाबा वरदान देते थे, बाबा दृष्टि देते थे, बाबा मुख में टोली डालते थे, ये प्यार बच्चे को जैसे माँ बाप से मिलता है वो अनुभव होता था। तो बाबा के कमरे में जाना माना बच्चा बन जाना, बिल्कुल बच्चा, और बच्चा बन करके बाबा की गोद में बैठ जाना बिल्कुल निश्चिंत, झोपड़ी में सब दे दिया खत्म कर दिया, और फिर आप बाबा को दे करके बच्चा बन जाओ बाबा के कमरे में। फिर उसके बाद हिस्ट्री हॉल में क्या बनेंगे, स्टूडेंट, और बाबा आपका टीचर, बाबा वहाँ बैठ करके मुरली चलाते थे, सारी मुरलियाँ वहीं पर गद्दी पर बैठ करके बाबा ने चलाई है, तो जैसे मुरली सुनते हैं तो बाबा को टीचर रूप में याद करते, तो हिस्ट्री हॉल में और भी सहज होगा बाबा को टीचर रूप में देखना, क्योंकि उसी गद्दी पर बैठ करके बाबा मुरली चलाते थे। तो स्टूडेंट बन के विचार सागर मंथन करना, मनन करना, चिंतन करना, ये स्टूडेंट बन करके बैठना हिस्ट्री हॉल में। तो वहाँ सखा, वहाँ माता पिता, वहाँ टीचर, और फिर शांति स्तंभ पर सतगुरु, जैसे ब्रह्मा बाबा ने हड्डियां अपनी गलाई, तभी तो संपूर्ण बने, कितनी सेवा की, अंत घड़ी तक सेवा की, और अंत घड़ी तक सेवा की, लास कराया, और फिर अंत के तीन शब्द उच्चारण किए, बच्चे सदा निराकारी निरहंकारी निर्विकारी रहना, और अच्छा बच्चों से छुट्टी। तो लास्ट तक बाबा ने सेवा की और कमरे में आए और कैसे अव्यक्त हुए दादी के सामने, दृष्टि और हाथ दादी का, और जैसे सारी शक्ति दादी को हैंडओवर कर दिया, सब कुछ विल कर दिया। तो बाबा का शांति स्तंभ माना बिल्कुल सतगुरु का रूप, सतगुरु बन करके बाबा ने कैसे हमें पावन किया, हमें फरिश्ता बनाया, हमें शक्तिशाली बनाया। तो ये हड्डियां भी अशरीरी बनने का अभ्यास सतगुरु के आगे, एकदम पावन पवित्र आत्मा हूँ ये अनुभव करना, ये शांति स्तंभ पर सतगुरु के सामने। तो ये चार पांच जो मुख्य संबंध है वो आत्मा इन चार धामों में करे। तो देखो यहाँ से जाएंगे तो ऐसे अनुभव करेंगे सचमुच हम फरिश्ता बन के उड़ रहे हैं, क्योंकि सारा बोझ खत्म और परिवर्तन संपूर्ण, यही बट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य। और अमृत वेले का महत्व भी बहुत है। अमृत वेले जैसे सवेरे सवेरे उठो, सबसे पहला संकल्प गुड मॉर्निंग, बाबा गुड मॉर्निंग, कोई देहधारी की याद न हो, और रात को भी गुड नाइट, बाबा को करके बाबा की गोद में सो जाओ। चलो देखो हमारे सामने मधुरवाणी ग्रुप आ गया है, हमारे सतीश भाई आए हैं आप सबका गीत द्वारा स्वागत करने के लिए। ओम शांति। सतीश भाई और निरंजन भाई हॉस्पिटल के आज दो हैं, तो आपका स्वागत करेंगे गीत के द्वारा।
तो आइए आए चंडीगढ़ वाले भट्टी की लगन पाले हैं। आए चंडीगढ़ वाले भट्टी की लगन पाले, स्वागत करते हैं दिल से हम मिलके मधुबन वाले, हम मिलके मधुबन वाले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
चंडीगढ़ वाले भट्टी की लगन पाले, आए चंडीगढ़ वाले भट्टी की लगन पाले। स्वागत करते हैं दिल से हम मिलके मधुबन वाले, स्वागत करते हैं दिल से हम मिलके मधुबन वाले। आए चंडीगढ़ वाले भट्टी की लगन पाले, आए चंडीगढ़ वाले भट्टी की लगन पाले। स्वागत करते हैं दिल से हम मिलके मधुबन वाले, आए चंडीगढ़ वाले भट्टी की लगन पाले। रक्षाबंधन का पर्व दादी के दिन पर आए, दादी चंद्रमणि का प्यार दीदी अचल की यादें लाए। रक्षाबंधन का पर्व दादी के दिन पर आए, दादी चंद्रमणि का प्यार दीदी अचल की यादें लाए। आओ तप कर ले शक्ति भर ले, आओ तप कर ले शक्ति भर ले, वैसे भी बड़े बहादुर होते हैं पंजाब वाले। आए चंडीगढ़ वाले भट्टी की लगन पाले, आए चंडीगढ़ वाले भट्टी की लगन पाले। की भूमि क्षत्रियों का पावन धाम, पांडव भवन ये प्यारा परम तीर्थ तारोहां। बाबा मम्मा की भूमि क्षत्रियों का पावन धाम, पांडव भवन ये प्यारा परम तीर्थ चारों धाम। यह जहाँ योग सहज लग जाए, दिल झूम झूम कर गाए। जहाँ योग सहज लग जाए, दिल झूम झूम कर गाए। यहाँ परियां और फरिश्ते सारे आकर डेरा डाले, आए चंडीगढ़ वाले भट्टी की लगन पाले। तकदीर जगी है अपनी सब दिल की दीर जगाए, करमों तपस्या भट्टी जग की तस्वीर सजाए। तकदीर जगी है अपनी सब की तकदीर जगाए, करमों तपस्या भट्टी जग की तस्वीर सजाए। कर चमत्कार बन यादगार, कर चमत्कार बन यादगार, भागी में फरिश्ते दिखते आए, बारिश में बारिश वाले आए, चंडीगढ़ वाले भट्टी की लगन पाले, आए चंडीगढ़ वाले भट्टी की लगन पाले। तकदीर जगी है अपनी सबकी तकदीर जगाए, करे मौन तपस्या भट्टी जग की तस्वीर सजाए। तकदीर जगी है अपनी सबकी तकदीर जगाए, करे मौन तपस्या भट्टी जग की तस्वीर सजाए। कर चमत्कार बन यादगार, कर चमत्कार बन यादगार, भागी में फरिश्ते दिखते आए, बारिश में बारिश वाले आए, चंडीगढ़ वाले भट्टी की लगन पाले, आए चंडीगढ़ वाले भट्टी की लगन पाले। स्वागत करते हैं दिल से हम मिलके मधुबन वाले, स्वागत करते हैं दिल से हम मिलके मधुबन वाले, आए चंडीगढ़ वाले भट्टी की लगन पाले, आए चंडीगढ़ वाले भट्टी की लगन पाले। आए स्वागत करते हैं दिल से हम मिलके मधुबन वाले, स्वागत करते हैं दिल से हम मिलके मधुबन वाले, आए चंडीगढ़ वाले भट्टी की लगन पाले, आए चंडीगढ़ वाले भट्टी की लगन पाले।